कब तक क्लास चल रहा था? 25 चार 1966 सोमवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, मैं मिसाल देता हूँ, अब कोई का तो मिसाल देना चाहिए ना। साहूकार भी उनको समझाते जाएंगे कि बच्चे अच्छा चलो, अभी तुम मरते हो ना, चलो अभी ये साहब दान कर दो। तो वो साहूकार बंदर के मुआफिक कभी नहीं छोड़ेगा। मर तो जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं, खुद तो जा करके दूसरा जन्म लेगा। पुण्य हो जाता है, कभी नहीं छोड़ेगा एकदम। बाबा कह देते हैं, अभी देखो ये मिसाल दे रहा हूँ, ये बंदर का मिसाल है। घूंगरे की मुट्ठी छोड़ता ही नहीं है, अरे बच्चे सबसे दिल हटा लो। जो भी तुम्हारा अपना है वो तुम अपना ना समझो, बाप का समझो। और बाप की श्रीमत पर चलो, पर वो मर जाएगा कभी नहीं छोड़ेगा। उनको वो ही बच्चे की प्रॉपर्टी है, फलाने की प्रॉपर्टी है। अरे वो बच्चे की प्रॉपर्टी नहीं है। तुम कहते हो ना हमको ईश्वर ही देता है। अरे भाई ये धन कहाँ से आया? कहते ईश्वर ने दिया है। ये बच्चा किसने दिया? अरे अभी तो ईश्वर डायरेक्ट आया हुआ है। ये सब बातें की पूछने के लिए तुम जो सदैव कहते रहते हो हमको ये धन वगैरह सभी परमात्मा ने दिया है, वो परमात्मा अभी खुद आया है। भले परमात्मा ने कहा है कि दान पुण्य करो भक्ति मार्ग में, अभी तो बोलता है मैं खुद आया हुआ हूँ, क्योंकि तुम्हारी धन दौलत सब खत्म हो जाने वाली है। बिल्कुल कुछ भी रहने वाला नहीं है। शरीर भी तुम्हारा नहीं, یہ ملکیت کسی کی بھی نہیں. گاتے بھی ہیں کن کی دبی رہی دھول میں, کن کی راجا کھائے, کن کی لے گئے چوٹا, کن کی آگ جلائے. اور یہ سبھی چیزیں آنے والی ہیں, سب ختم ہو جانے والے ہیں. ایک تو یہ اک کے ایک, جب یہ اک کے ایک ہوں گے نا سب مٹی میں دب جائے گا. ایروپلین بھی گرتے رہتے ہیں, جب ایروپلین گرتا ہے تو سب سے پہلے تو چور وہاں بھاگتے ہیں, جب تک پولیس کا پہرا آبے تب تک وہ گھس جاتے ہیں, کہاں بھی گھس جاتے ہیں. یہ سبھی انبھو ہے, کہاں بھی آگ لگے گی تو چور پہلے اندر گھسیں گے. ان کا یہی چوری کا دھندا, یہی موقع ہے کہ کہاں سے کوئی چیز اٹھائے لے. پیچھے پولیس آتی ہے, کھڑی ہوتی ہے تو باپ سمجھاتے ہیں یہ موہ بھی نکال دو. ابھی موہ جیت بننا چاہیے. اور یہ دیوتائیں تو ہوتے ہی ہیں موہ جیت. تو ضرور تم یہاں موجود بنے ہوئے ہوں گے. سبھی وکاروں کو چھوڑا ہوگا, یہ کام کرودھ اور دیہ ابھیمان تو پہلے پہلے, کیونکہ یہ دیہ ابھیمان ہے پہلا پہلا دشمن. راون کا راج جب شروع ہوتا ہے تو دیہ ابھیمانی بن جاتے ہیں. یتھا راجا تتھا پرجا, نہیں تو وہی دیوتا ہیں پہلے دیہی ابھیمانی تھے. تو دیہ ابھیمان ہونے سے پیچھے دیکھو یہ کیسے پھنس گئے بکاروں میں, بھکتی میں, وہ سب پھنس گئے. تو آدھا کلپ کے جو تم دیہ ابھیمانی ہو, ان دیہ ابھیمانیوں کو پریکٹس کرانی پڑتی ہے کہ اپن کو آتما سمجھو. آتما ریئلائز کرو کہ ہم بندو آتما ہیں, ہم اسٹار آتما ہیں, ہم کوئی دیہ نہیں ہے. باقی دنیا میں کوئی کچھ کوئی کو معلوم تھوڑی ہے آتما کیا چیز ہے. نہیں معلوم ہے تو جیسے جانور, تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں نا کہ تم تو کوئی جانور ہو. پچا 25 4 66 की वाणी का तीसरा पी जानवर हो क्योंकि न आत्मा को जानते हो न परमात्मा को जानते हो तो जानवर ठहरे ना। देखो दुनिया में सभी जानवर जो भी मनुष्य मात्र हैं इस समय में जानवर बुद्धि, क्योंकि न आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या क्या पार्ट बजाती है, परमात्मा पार्ट क्या है, फिर आत्मा ये कितने जन्म लेती है, कैसे कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं ये कोई को भी पता नहीं। आत्मा परम धाम से आती है, वहां से आकर के पार्ट बजाने के लिए इस धरती पर आती है, वो भी किसी को पता नहीं है। इसलिए जो आर्फन्स कहे जाते हैं ना, निर्धन के, अर्थात उनका धनी धोरी कोई है नहीं, क्योंकि कोई भी अपने असली बाप को नहीं जानते। बाप आकर के एक बोलते हैं, देखो अभी यानी है तो ये ड्रामा, परंतु कोई एक भी न अपनी आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं, और ऐसा कोई को भी पता नहीं है। जैसे तुमको समझाए हमारी जो आत्मा है, अरे ये आत्मा तो है ही ना, वो तो कह देते हैं आत्मा लीन हो जाती है, जैसे पानी के बुदबुदे सागर में बुदबुदे निकलते हैं और सागर में लीन हो जाते, फलाना हो जाता है। अरे बुदबुदे लीन नहीं हो जाते हैं, आत्मा कोई बुदबुदा नहीं है, लेकिन आत्मा में अपने अपने तरीके से जो संकल्पों की बुदबुदाहट होती रहती है, अपनी अपनी अपने अपने तरीके से वो सबकी अंदर की बुदबुदाहट परमपिता परमात्मा के संकल्प में समा जाती, जिसको कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो सबके सारी दुनिया की आत्माओं के संकल्प एक हो जाते, बाकी ऐसे नहीं कि आत्माएं परमात्मा में मिल जाती हैं, नहीं, ये आत्मा तो अविनाशी है, इस आत्मा को जो छोटी सी है, इस आत्मा में हमारा 84 जन्म का पार्ट बड़ा हुआ है, जो समझाते तो है ना। हाँ, सबका 84 जन्मों का पाठ नहीं होता है। वो भी तो समझते नहीं है। आत्मा कहती है मैं 84 जन्म लेती हूँ, कौन सी आत्मा कहती है? है जिन्होंने आत्म की स्थिति को पक्का पक्का धारण किया है, सूर्यवंशी बाप के बच्चे बने हैं, उनकी आत्मा कहती है मैंने 84 जन्म धारण किए। बाकी और धर्मों में जो जाने वाली आत्माएं हैं, वो कोई 84 जन्म थोड़े ही धारण करती है। न चंद्रवंशी, न इस्लाम वंशी, न बौद्धी, न क्रिश्चियन। तो अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ गया कि हमने 84 जन्म धारण किए हैं, तुम बच्चे कौन? तुम कहा ही जाता है सन्मुख वाले को, तो देखो ये आत्मा का कोई को भी मालूम नहीं है, नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानते हैं कि परमात्मा भी बंदी में चल है। कहते हैं स्टार, तो भी समझते नहीं है कोई कोई कि स्टार मिसल कैसे है। फिर क्या, स्टार नहीं है तो जाके लीन होगी। वो ही आत्मा सो परमात्मा ऐसे बोल देते। तो देखो कुछ भी नहीं जानते हैं। कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमपिता क्या है, आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, सभी आत्माएं क्षरित होने वाली हैं, माने आत्माओं की ज्योति उजियानी हो जाती है, शक्ति क्षीण होती है, एक है परमात्मा, उसकी शक्ति 84 जन्मों में भी उंजियानी नहीं होती है। उसका नाम सदैव परमपिता शिव के साथ लिया जाता है। कहते हैं शिव शंकर, परंतु उसका भी कोई बाप है। परमात्मा का बाप है परमपिता। आत्माओं का भी बाप है परमपिता। अंतर क्या है? परमपिता अक्षर है, कभी शक्ति से क्षरित नहीं होता। और आत्माएं शक्ति से क्षरित होती हैं। परमात्मा भी और आत्माओं के मुकाबले उतना क्षरित नहीं होता। होता है तो संगम युग में ही, विश्व कल्याण के लिए, अनेक आत्माओं का गहरा संग होने के कारण कहेंगे कि नंबर वार की कोटि में क्षरित होता है। नंबर वार है तो कोई डबल नंबर भी होगा, जिसे कहा जाता है अल्लाह बल्लीन, अल्लाह ऊंच को कहा जाता है। ऊंच और नीच का सवाल इस दुनिया में होता है। जो आत्माओं का लोक है उसमें ऊंच और नीच का कोई सवाल नहीं। इसलिए गीता में भी आत्माओं के दो प्रकार बताए, एक क्षरित होने वाली आत्माएं और एक अक्षर आत्माएं। जो अक्षर है वो ही ईश्वर है, जिसे शिव कहा जाता है, परमपिता कहा जाता है। वो धर्म पिताओं का भी बाप है, बापों का बाप। मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उसका भी बाप। हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उसमें वो अक्षर बाप शिव पहले पहले प्रवेश करता है। इसलिए जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा देता है। ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा को तो पंचमुखी भी दिखाते हैं। चार मुख वाला भी दिखाते हैं। चार पांच मुख हैं तो आत्माएं भी चार होंगी। परंतु उनमें भी नंबरवार जरूर कोई अव्वल नंबर ब्रह्मा भी है। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वो ही अव्वल नंबर विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु, वो है परम पद। इसलिए गीता में आत्माओं की तीन कैटेगरी दिखाई, एक सर्वोपरि अक्षर परमपिता शिव, उसके बाद विष्णु पदधारी, और बाकी सब चरित की स्टेज में आते हैं। शशि रूपी रंगमंच में उनका सुख नंबरवार कम होता जाता है। बाकी दुनिया के लोग इन बातों को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। जैसे कि बताया, वो फिर परमात्मा की तो बात भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, समझते हैं सभी आत्माएं परमात्मा हो जाती है। अरे परम का अर्थ ही है बड़े से बड़ा, एक थोड़े ही होगा। आत्मा के लिए कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा प्रकृति के बीच में। चलो भाई वो भी जानते हैं। अच्छा फिर परमात्मा का तो बिल्कुल किसको भी पता नहीं है, परिचय ही नहीं है। कह देते हैं सभी आत्मा सो परमात्मा, सभी आत्माएं परमात्मा कैसे हो सकती। आत्मा सो परमात्मा ये तो ठीक है, परंतु कौन सी आत्मा सो परमात्मा, जो परम पार्टधारी है वो ही आत्मा तो परमात्मा। सच रूपी रंगमंच है, आत्माएं पार्टधारी हैं, तो पार्टधारियों में कोई हीरो पार्टधारी भी होगा ना। जो हीरो पार्टधारी है वो ही परमात्मा। परमात्मा माने ही परम, परम पार्ट। तो देखो कभी कोई को सुना कि आत्मा का भी जो रूप है वो नाम रूप देश काल भाई आत्मा, उसको परमात्मा कहा जाता है। लोग कहते हैं ना, अरे वो भी तो रहते हैं परम नाम में, जैसे हम रहते हैं। व्यर्थ तो उनका भी परम नाम रूप जैसे आत्मा का है वैसे उनका भी है। तभी उनमें फर्क क्या है? रूप के आधार पर तो वो भी छोटा है, हाँ, जब परमात्मा के रूप में पार्ट बजाता है वो है संगम युग। जहाँ के लिए कहा जाता है पुनर्जन्म रहित है, जैसे बाप शिव पुनर्जन्म रहित है, परम पिता पुनर्जन्म रहित है, परमात्मा भी पुनर्जन्म रहित। कैसे? वेद की बात है, बाप का निश्चय हुआ, बाप का बच्चा बना, बाप कहेगा बच्चे का जन्म हुआ, बाप में निश्चय टूट गया, निश्चय टूट गया, निश्चय हो गया, मन बच्चा मर गया, बच्चा बच्चा नहीं रहा तो मृत्यु हो गई। निश्चय है तो जन्म है, अनिश्चय हुआ तो मृत्यु। तो देखो अब इन बातों को समझने की कितनी बुद्धि है किसी में? हाँ खड़े होके बोलो। हाँ होता है, क्यों नहीं होता? पुनर्जन्म होता है तभी तो पुनर्जन्म वाला है, जन्म पुनर्जन्म वाला है। लेकिन जो बाप है परम आत्मा मनुष्य सृष्टि का बाप संगम में, उसकी मृत्यु होती है, अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है, होती है नहीं होती है? तो वो पुनर्जन्म रहते, जैसे परम पिता शिव पुनर्जन्म रहते हैं, वैसे ही जो हीरो पार्टीधारी है जो सिर्फ संगम युग में ही प्रत्यक्ष होता है वो भी पुनर्जन्म रहते हैं। ये बातें किसी की बुद्धि में होंगी? कोई भी मनुष्य मात्र, क्योंकि उनकी बुद्धि में नहीं है। किस तरफ इशारा किया है? 66 की वाणी है, बोला इनकी बुद्धि में नहीं है। किनकी? ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं है तो इसकी कहना चाहिए? इसकी माने इस एक की बुद्धि में नहीं है, इनकी क्यों कहा? 66 की वाणी है, उस समय तो ये बातें क्लियर ही नहीं हुई थी। जैसे राम की बुद्धि में नहीं है वैसे कृष्ण की भी बुद्धि में नहीं। अरे इनकी बुद्धि में नहीं है, वो भी तो पढ़ते हैं। कौन? 66 में राम और कृष्ण भी तो पढ़ते हैं। तो देखो ये भी तो पढ़ा हुआ है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, परमात्मा भी ऐसे ही है। उनके लिए कहा जाता है ان کے لیے نہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ 66 میں تو پرماتما کا پارٹ, پرماتما پارٹ کیا ہے, کون ہے, یہ پرتیکش ہی نہیں ہوا. جب پرتیکش ہو تب کے لیے بتایا. کہ انہیں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جان کا ساگر ہے. ساگر اور سوری میں کیا اندر ہے؟ ہے ساگر دھرنی سے چپک کے رہتا ہے, پروتی مارگ ہے یا نوتی مارگ ہے؟ پروتی مارگ. جو پرم پتا شیو ہے وہ سوریہ ہے. وہ پرم پتا شیو ہے جب پرویش کرتے ہیں مقرر رتھ میں تب کہا جاتا ہے گیان ساگر یا گیان مان سروور. شانتی کا ساگر. سو برابر یہ بھی ہے, باقی اور جو دیوتائیں ہیں وہ ابھی گیان کا ساگر نہیں ہے. ایک دیوتا کی بات ہے جس کو تیسرا نیتر دکھایا جاتا ہے, ترینیتری کہا جاتا ہے, اسے شیو نیتر بھی کہتے ہیں کیونکہ شیو پرویش ہے. تو وہ گیان کا ساگر ہے اور دیواتما گیان کا ساگر نہیں ہے. باقی وہ پوترتا کا ساگر ہے, برابر ہے, کیونکہ پیچھے نیچے آئیں گے تب جب سنگم یوگ کے بعد دوسرے یوگ آئیں گے تب نیچے آئیں گے. باقی ابھی تو پوترتا کا ساگر ہے. کون کس کی بات ہو رہی ہے؟ ارے ایک آتما کی بات کہ ساگر کون ہے, چندرما کون ہے, ایک آتما ہی تو ہوگی. پرتھوی کون ہے, سوریہ کون ہے, پوترتا کا ساگر ہے, شانتی کا ساگر ہے. پیچھے نیچے آئیں گے. پیچھے مانے کب؟ اس کے بارے میں بات ہوئی. شیو باپ تو کبھی نیچے آتے نہیں, تو کس کی بات ہے؟ ایک کی ہی بات ہے جو منشی سرشی کا باپ ہے. تو دیکھو ابھی اس سرشی میں کوئی ہے ایسا کیسا ہے؟ ایسا کوئی نہیں. ان کی مہیما کرتے ہیں. انہوں کو یہ انہیریٹنس کہاں سے ملا, ورثہ کہاں سے ملا پوترتا کا, کہاں سے ملا؟ سنگم یوگ سے ملا. کس سے ملا؟ شیو باپ سے ملا. انہوں نے کیسے کرم کیے جو ایسے بنا ہے؟ ارے اچھے ہی کیے ہوں گے کہ برے کرم کیے ہوں گے؟ کیسے کرم کیے جو ایسے بنا؟ دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ اس ہیرو پائلٹ دھاری نے کیسے کرم کیے جو اور انہوں نے نہیں کیے. دنیا والے بالکل نہیں جان سکتے, تو ضرور کوئی ایک ہے سمجھانے والا. تو ایک کوئی پھر کہا جاتا ہے گیان کا ساگر. یہ سبھی تو گیان کے ساگر نہیں ٹھہرے نا. ایک ہے گیان کا ساگر جو آ کر کے ابھی گیان دیتے ہیں, پھر پیچھے جب یہ نیچے آئیں گے تو پھر یہ گیان پرائے گم ہو جاتا ہے. سچ تو تریتا دواپر کلیوگ میں یہ گیان رہے گا؟ نہیں رہے گا. پیچھے گیان کی بات بھی نہیں ہوتی ہے, بس پھر گیان آ کر کے ابھی سنگم یوگ میں دیتے ہیں. پیچھے کیا ہے؟ پیچھے تو بھکتی, اس کو گیان نہیں کہا جاتا ہے. بھکتی کو گیان کبھی نہیں کہا جا سکتا. گیان سے تو سدگتی ہوتی ہے. یہ درگتی ہوتی ہے. درگتی مانے کیا؟ دکھ دینے والی گتی, نیچے لے جانے والی گتی. ست گتی, ست مانے سچی. ست گتی کیا؟ سکھ میں لے جانے والی گتی. ستیوگ تریتا ہے ست گتی, اوپر لے جانے والی ست گتی. سچائی اوپر ہے یا جھوٹ اوپر ہے؟ سچائی اوپر ہے. بھکتی کو گیان کبھی نہیں کہا جا سکتا. بھکتی سے سدگتی ہوتی ہے کیا؟ 2000 سال سے بھکتی ہوتی آئی, کوئی کی سدگتی ہوئی کیا؟ وہ تو یوں ہی کہہ دیتے ہیں فالوورس اندھ شردا میں آ کر کے, بدھ پار نروان گیا, شنکراچاریہ پار نروان گیا. اس کا کوئی پروف ہے؟ ارے وہ جاتا تو اپنے فالوورس کو بھی لے جاتا نا. تو بھکتی سے درگتی ہوتی ہے, اور وہ درگتی ہوتی ہی رہتی ہے جب تک کہ سرو کا سدگتی داتا آوے. جب کہ گیان ساگر آوے और ज्ञान स्नान का ही। अभी गीता में स्नान करना ज्ञान स्नान कहा जाता है, क्या पता? कुछ जो गीता पुस्तक में ज्ञान स्नान करते हैं वो तो पानी का स्नान है। पानी के स्नान क्यों? क्यों कहा पानी का स्नान? नदियों में स्नान करते हैं तो वो पानी का स्नान है। क्यों पानी का स्नान? क्योंकि पानी को बिलोने से कुछ नई चीज नहीं निकलती है, इसलिए त्या पानी का ज्ञान। नदियां चाहे चैतन्य हो चाहे नदियां जड़ हो, उनमें ज्ञान स्नान करने से कोई नई बातें नहीं निकलेंगी, वो कोई नई बातें नहीं सुनाएंगी। तो वो गीता पुस्तक जो 2500 साल से पढ़ते आए, कोई नई बातें नहीं निकलती है। और ये जो ज्ञान की गीता है जो ईश्वर आकर के सुनाते हैं, उसमें तो अंत तक नई नई बातें निकलती रहेंगी। इसलिए बोला तुम्हारी गीता कभी फिनिश होती ही नहीं है, नित्य नई नई बातें ज्ञान की निकलती ही रहेंगी। तो वो पानी का स्नान, तो देखो पत्थर बुद्धि हो गए ना, इतना भी नहीं समझते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें इन बच्चों को समझ में आती हैं। जो मुख्य बातें हैं और उनके ऊपर ये मुख्य लिखत, भाई ज्ञान का सागर चाहिए। या कोई बतावे कि पानी के सागर से गंगा निकली, तो ये मुख्य हुआ ना, तो मुख्य चित्र बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये बुद्धि में रखना चाहिए, चित्र बनाने वालों को भी बुद्धि में रहना चाहिए अच्छी तरह से। तो मुख्य चित्र बड़े अक्षरों में, थोड़े बड़े और भी बड़े हों जो समझाने में, जितने बड़े हों उतना अच्छा। देखो ये बड़े चित्र तो समझा सकते हैं ना, ये गोला बहुत बड़ा है, इनसे भी बड़ा गोला हो तो मनुष्य बिल्कुल समझ सकते हैं। हम लिख भी सकते हैं बहुत कुछ बातें, क्योंकि इस छोटे गोले में इतनी लिखत नहीं लिख सकते हैं। अभी कोई कोई बुलाया जाता है, जरूर निमंत्रण दिया जाता है कि आकर के अपने परमपिता का परिचय सुनो और उनसे वर्षा लो बेहद के सुख का, 21 जन्मों का, क्योंकि दो बाप होते हैं, एक यह लौकिक मिलते हैं और ये पारलौकिक है। तो बहनों भाइयों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। सड़क का स्वराज्य मिलता है, जो हद के बाप लौकिक होते हैं, लौकिक दुनिया के, उनसे स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता है। ये बात आकर के समझो, तो सब हद के बाप हैं। वेद का बाप ने 500-700 करोड़ का बाप, बाकी जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि हैं वो सब हद के बाप। क्रिश्चियंस का बाप क्राइस्ट, उसको फॉलो करने वाले आज दुनिया में 200 करोड़ से भी ऊपर। दुनिया की आबादी 500 करोड़, परंतु वो भी हद का बाप हुआ, बेहद का नहीं कहेंगे। और बाप तो सर्व का सदगति दाता है, 500-700 करोड़ का सदगति दाता। तो ये बेहद के बाप, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप की बात आकर के समझो। अच्छी चार छियाछठ की वाणी का चौथा पेज, तो अगर वो भी बार में लगा हुआ हो तो कोई भी अर्जा नहीं है। ज्ञान देना है ना, फिर भले है तो ब्रह्मा कुमारियों के सिवाय तो कोई ज्ञान नहीं देगा। उनको तो समझाया जाता है ना, आकर के वेद के बाप से वर्षा पाने का रास्ता सीखो, उसमें तो कोई कुछ भी है। ब्रह्मा कुमारी है तो क्या, तुमको सीखने से काम, इसमें डरने का तो कोई काम है ही नहीं। पीछे जब तुम कहेंगे, तुम याद करेंगे तो सड़क का मालिक बनेंगे, तो पावन रहना पड़ेगा। ये पीछे कहने की बात है, पहले नहीं, क्योंकि तुम बुलाते रहते हो कि ये पतित पावन आओ, तो बाप भी आकर के कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इसने ही तुमको जन्म जन्मांतर गिराया है, पतित बनाया है। कुछ काम का नहीं है। अगर पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना पड़े, और पावन ही नहीं बनेंगे तो पावन दुनिया में कैसे जाएंगे। तुम बुलाते ही हो पतित पावन आओ, आ करके हम पतितों को पावन बनाओ, तो पावन बनाते ही है स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो समझना है ना कि हम यूं तो पतित हैं ना, सभी पतित हैं, और पतित कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। वी माने विपरीत, कार माना कार्य। भगवान ने जो कर्म बताया उस कर्म के विपरीत कार्य करते हैं। क्या विपरीत कार्य करते हैं? विकार करते हैं। अर्थात बाप ने तो सिखाया है कर्म इंद्रियों से सुख लेना है, सुख देना है, कर्म इंद्रियों से दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है, यही तो बाप ने सिखाया। लेकिन बाप ने ये भी कह दिया, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, विकारों का दुष्ट युद्ध करते हैं। दुष्ट युद्ध क्या होता है? दुष्ट युद्ध है बाहुबल चलाना। जोर जबरदस्ती करना, कन्या माताएं तो अबला होती है, उन्हें फिर दुर्योधन दुशासनों की जोर जबरदस्ती सहन करनी पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, सब दुर्योधन दुशासन है। पुरुषों को जब आदेश आता है तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि दूसरे को दुख होगा या सुख होगा, उस आवेग में खुद भी पतित हो पड़ते हैं। अगर वैसा आवेग ना आवे काम विकार का या क्रोध या कोई भी विकार का, तो पतन भी ना होवे। तो बात आती है पतित किसे कहा जाता है। पतित माने गिरा हुआ, क्या गिरा हुआ, शक्ति से गिरा हुआ, शक्तिपात माने पतित। और ऐसे जो विकार में जाते हैं तो फिर जरूर कहेंगे विकार से ही जन्म होता है। ये याद करो कि भ्रष्टाचारी कहा ही उनको जाता है जो भ्रष्टाचरण से विक से पैदा होते हैं। क्योंकि सतयुग और त्रेता में ये विक नहीं होता है। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है। इंद्रियों में कोई भी विचार नहीं होता। द्वापर युग में द्वैतवादी युग है, इंद्रियां भी विचारी होती हैं। दिख कहा ही जाता है, पर पुरुष का सेवन करना, पर स्त्री का सेवन करना, तो देखो द्वापर कलयुग को विकारी दुनिया कहा जाता है और सतयुग त्रेता को निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। देखो ये लक्ष्मी नारायण है ना निर्विकारी, अंग्रेजी में उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, यानी उनमें वॉइस है ही नहीं, वो विशेष है ही नहीं। पीछे प्रश्न नहीं पूछो बच्चा कैसे पैदा होगा, पहले तुम श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले श्रेष्ठाचारी तो बनो, वॉइसलेस तो बनो। जैसे और बच्चे पैदा होते होंगे वैसे होंगे। ऐसा तुम ख्याल क्यों करते हो, ये पूछते ही क्यों हो कि विकारों की तरह बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाबा कहते हैं कि देवताएं वॉइसलेस हैं, फिर भी उनको बच्चे तो होते हैं ना। क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगते हैं, बस इंद्रियों से सुख नहीं भोगते, बस वहाँ कैसे भी जन्म होता है बच्चों का, साक्षात्कार होता है, उसको कहेंगे योग बल से पैदा होते हैं। ये श्रेष्ठ इंद्रियों का श्रेष्ठाचारी योग है, व्यभिचारी योग नहीं है। परंतु योग बल से भी वो समझेगा नहीं। जब तक उनको पहले न कहेंगे कि तुम ये पूछते ही क्यों हो, मुझे पढ़ेंगे, पहले में पहले तो बाप को याद करो, पवित्र हो तो पवित्र दुनिया में आ जाएंगे। याद करो तो तुम्हारा जो पाप किया हुआ है, जन्म जन्मांतर का जो बोझ है, वो बाप की याद से कट जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का बाप सदैव ही निर्विकारी है। जैसे को याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा वैसे ही बनेगी, और ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाप का घर और बाप का बनाया हुआ स्वर्ग, वो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। द्वापर कलयुग को पतित आत्माओं की दुनिया कहो तो ठीक भी है, परंतु सतयुग त्रेता को, रामकृष्ण की दुनिया को पतित दुनिया कहेंगे तो पापात्मा ही ठहरे। वो पुण्यात्मा माने ही पावन आत्मा ठहरे, तो ये उनको अच्छी तरह से बुद्धि में बैठाना होता है। अभी चलना है, भक्ति का फल पाना है, भगवान से पाना है। ये भक्ति का फल भगवान आकर के क्या देते हैं? वो धर्म पिताएं क्या देते हैं? दुर्गति ही दी ना दुनिया को, और भगवान क्या देते हैं? अरे ये दुर्गति तो कलयुग में है, दुर्गति वालों को भगवान आकर के सदगति का फल देते हैं। और ये मनमना भव का एक ही अक्षर का मंत्र है, तो वो तो समझ लेते हैं कि बाप है तो वर्षा जरूर मिलेगा, नहीं तो मंत्र सिर्फ है मनमना भव, यानी एक बाप को याद करो। देह का भी भान छोड़ दो, तुम आत्मा हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर तुम सतोप्रधान हो जाएंगे। ओम शांति।